नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ पंचम स्कंद त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 7। सुरेर्हितस्व क्वच निर्विष्ण चेता सोचन निमुह्यन्नुपयाति कर्कस्मलम्। क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निवृततवन्मुहूर्तम्। सुरैर्हितस्व क्वच निर्विष्ण चेतः सोचन्यमुह्यन्युपयाति कस्मलम्। क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निवृत तवन्मुहूर्तम्।
शब्दार्थ सुरेर प्रबल शत्रुओं द्वारा, रितस्वह जिनका समस्त धन चुराया जा चुका है, क्वच कभी कभी निर्विष्ण चेता हृदय में अत्यंत दुखी एवं व्यथित, शोचन अधिक पश्चाताप करते हुए, विमोहन किं कर्तव्य विमूढ़ हो करके, उपयति हो जाता है, कस्मलम संज्ञा शून्य या अचेत, क्वचित कभी कभी, च भी गंधर्वपुरम जंगल में स्थित कपोल कल्मित नगर में, प्रविष्ट प्रवेश हुआ, प्रमोदते आनंद भोगता है, निवृत्तवत सिद्ध पुरुषों के समान, मुहूर्तम केवल क्षण भर के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है, इससे वह दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप भी करता है, यहां तक कि कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रसाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वह अपने परिवार तथा अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा ही हो सके तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है। किंतु ऐसा तथा कथित सुख क्षणिक होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में गंधर्वपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच बहुत एक बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है, इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता, इसे गंधर्वपुर कहा जाता है। इस संसार रूपी जंगल में बद्ध जीव कभी कभी बड़े बड़े किले तथा गगनचुंबी प्रसादों की कल्पना करने में अपनी शक्ति नष्ट करता है, और इनमें अपने परिवार सहित सदा के लिए सुखपूर्वक रहने की आशा बांधता है। किंतु प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वह ऐसे किलों में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए अपने को सुखी समझता है, किंतु इसका यह सुख स्थायी नहीं होता। यह सुख कुछ ही वर्ष चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसे यह किला छोड़ना पड़ता है। सांसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यापति ने ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है जो मरुस्थल में पानी की एक बूंद देखकर उत्पन्न होता है। मरुस्थल में सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है, अतः यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाना चाहते हैं तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। भला ऐसे में पानी के एक बूंद का क्या प्रभाव हो सकता है? पानी का महत्व तो निश्चय ही है, किंतु एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। ऐसे में काल्पनिक दवाई किले से क्या काम चलेगा? इसलिए श्रील विद्यापति ने गाया है, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। गृहस्थ जीवन मित्रों तथा समाज के सुख की तुलना जंगल से हुए रेगिस्तान में पानी की बूंद की सी की गई। यह समुच्चा संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्यवश इस संसार के संपर्क में आकर जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए केवल संघर्ष ही करता रहता है। यदि कुछ काल के लिए वह सुखी हो भी जाता है तो उसका कोई प्रबल शत्रु उसका सर्वस्व लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें बड़े बड़े व्यापारी सहसा दिवालिये बन जाते हैं। तो भी इस संसार की प्रकृति ऐसी है कि मूढ़ लोग इसके प्रति आकृष्ट होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये पंचम स्कंद में ये जो प्रसंग अभी चल रहा है, जिसमें महाराज राहुगण और ब्राह्मण देव श्री जड़ भरत, वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, तीन जन्म के आत्मज्ञानी महापुरुष थे। इतने बड़े एक्सपीरियंस होल्डर, इतने बड़े महात्मा, इस जन्म में तो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, सब कुछ होते हुए उन्हें जड़ बन चुके हैं जानबूझ करके, और उन्होंने जन्म से अभी तक जो मुंह नहीं खुले थे आज रघुगण के सामने अपने मुंह खोले, जवान खुले, कुछ बात किए। और इस बात से यद्यपि राजा रघुगण बड़े प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी ये जटिल आत्म तत्व को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। देखिए रघुगण महाराज को छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वो कपिल भगवान के पास जाते बड़े आत्मजिज्ञासु ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी जब भरत ने उनको समझाए उनको समझ में नहीं आ रहा था क्लियर। तो जड़ भरत ने देखे कि राजा तो राजा ही है, बड़े हम साधारण हमारे कोई छोटे मोटे संपत्तिवान इतने आसक्त होता है, राजा तो इतने ऐश्वर्य है, इतने संपत्ति कितने ज्यादा। तो बोले वो ऐसे ही भाषा में नहीं समझेगा, उसको एक ऐसे उदाहरण देना पड़ेगा इतने डोज जैसे उनको लगेगा कि हाँ ऐसा है। इस संसार से विमुख कराने के लिए कभी कभी इसी प्रकार कथाएं कहना पड़ता है महापुरुष लोगों को। तो इसलिए जड़ भरत ने ब्राह्मण ने उन्होंने एक कहानी उनको बताने लगे। वो कहानी का आशय था, कहानी का नाम है भवाटवी। भवाटवी के वर्णन, भव माने भव संसार, अटवी माने अरण्य जंगल। ये संसार को एक अरण्य के साथ तुलना करके बोले, बोले ये जो संसार है जिनको जिनके आपने रहता है जिसको अपने आपने राजा समझ रखा है नेता समझ रखा है वो एक जंगली है। कभी कभी महापुरुष लोग के संसार को समुद्र, संसार को जंगल, संसार कई प्रकार वर्णन किए हैं। समुद्र हो जंगल हो एक ही है कि परेशानी है, समुद्र में डूब के मरेगा, जंगल में हिंसे तो खा जाएंगे मरेगा, इनसे निकलना है। जंगल में कोई रहना पसंद नहीं करता कि समुद्र में कोई रहना पसंद नहीं करता, इसी प्रकार संसार में कोई रहना पसंद नहीं करना चाहिए लेकिन उल्टी दिशा, हम तो कुछ छोड़ना, हम तो सेटल हो गए, अभी तो हम सेटल हो गए, वाह समुद्र में डूब के सेटल हो गए, नहीं चाहते। तो इस बुलबुलिया से निकालने के लिए कभी कभी ऐसे कहानी बनाकर निसार कड़ी बात कहना पड़ता है। तो देखे कि समझ नहीं पा रहा है उनको समझाने के लिए, ये जो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये अध्याय त्रयोदश अध्याय संपूर्ण संसार जंगल या भवाटवी के वर्णन किए हैं। तो इसमें जंगल में ये समुच्चय संसार को एक अरण्य माने हैं, और उसमें बोले दो रास्ता है, एक प्रवृत्त मार्ग एक निवृत्त मार्ग। निवृत्त कोई होना नहीं चाहते, सब फंसना प्रवृत्त होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस लोक में कोई एक ऐसे कीड़े मकोड़े तक नहीं है देवता से लेकर नीचे तक जो सुख के लिए प्रयास ना करे, सभी सुखी होना चाहते हैं, एक ही तो प्रोजेक्ट है सबका, सभी चाहते हैं। लेकिन गलती गड़बड़ी यही है कि सुख कैसे प्राप्त करे उपाय नहीं पता, हाउ टू बिकम हैप्पी दे डोंट नो। अरे भैया अनंत जन्म से अनंत प्रकार चेष्टा करते चले हैं लेकिन हाथ नहीं लगता सुख, तो कभी कभी तो आशा छोड़ देते हैं, बोले ये अरे सुख फुक कुछ है ही नहीं, ये जानते ही नहीं सुख क्या है, बोलते हैं चलो सुख नहीं है तो कम से दुख से तो बच जाए, तो इसलिए दुख निवृत्ति करने के लिए लग जाते हैं, बोले दुख निवृत्ति ही सुख है, बोले जल के भी हो नहीं लेकिन फिर उसको माने दुख भी निवृत्त नहीं होता, सुख तो मिलना दूर की बात है, दुख भी नहीं जाता। तो इसी दशा में इस संसार में सुखी होने का आशा लेकर के समुच्चय प्राणी इस संसार जंगल में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो प्रवृत्त मार्ग है उसे फंस जाते हैं। और सुख कैसे, सुख तो अर्थ से मिलता है सब जानते हैं, इसलिए पैसा सबको हनी के से मीठा लगता है। तो अर्थ उत्पन्न करने के लिए सबसे बाकी कोई कठिन संस्था सबसे बढ़िया है बिजनेस करो, ये नौकरी फोकरी पहले जमाने में नहीं था, ए आई टी जॉब फॉब इतने सब था नहीं, तो इसलिए नौकरी ज्यादा नहीं करते थे, नौकरी जो करते थे फिजिकल सर्विस करना पड़ता था, इसलिए प्राय नौकरी फोकरी को कहना, आजकल इस नए आई टी जॉब हो गया सब बैठे बैठे मजा मारते हैं, लेकिन पहले कंपनी अपनी था नहीं है, कोई कंपनी नहीं था, कोई प्रकल्प ये सब था नहीं, तो इसलिए काम करना पड़ता था। तो नौकरी सब अपना अपना धंधा ठीक ठाक को ले संतुष्ट है हम जैसे, लेकिन ले देकर करना तो पड़ता था, तो इसलिए बिजनेस ही एक ही था जिसमें धन समुच्चय इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए सुखी होने के लिए प्राय मनुष्य समाज में वणिक गोष्ठी सब वणिक व्यवसाय बनना चाहते हैं, इसमें धन उपार्जन होगा और सुख के कल्पना करते हैं, सुख देखते हैं। तो इसलिए जितने सुख अभिलाषी है मनुष्य को इस संसार रूपी अरण्य में ये वणिक गोष्ठी माना गया, बोले सुख के लिए बिजनेस करने के लिए निकले, उसके अंदर प्रवेश किए। अब जाते हैं जो थोड़े बहुत पूंजी है लेकर जाते हैं, अब क्या क्या सब उसमें और वर्णना करते हैं कि वहां पे जो दस्यु लुटेरे हैं जंगल में, बहुत डाकू हैं लुटने, वो डाकू कौन है, बोलते हैं आपके जो छह इंद्रियां हैं मन को लगा करके, बोले यही है आपको लूटने वाले दस्यु। और जंगल में तो हिंस्र जंतु भी खा जाएंगे आपको, बड़े बड़े शेर भालू ये सब हटा दी। बोले वो कौन है, बोलते परिवार सदस्य, पारिवारिक जो हम नाम नहीं बोलेंगे आप सब जानते हैं। बोले जो खास अपने निजी परिवार के सदस्य वो ही खून चूसने वाले होते हैं, बाकी तो बेचारे मांग के कुछ लेते हैं, ये खून को चूस जाएंगे। तो वो होता है बड़े बड़े शेर और अगरा जैसे खा जाते हैं आपको, इस प्रकार है। और उसके अलावा और भी भ्रमित करने वाले कई एजेंसी होते हैं। तो इसी में जब जाते हैं, अब आप वर्णन सुन से पढ़कर आए हैं ये वणिक गोष्ठी सुख आशा किस प्रकार चले हैं। अब आकर के आज के श्लोक के कहते हैं कि कभी कभी सुरेर हृतः, कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो उनको बलवान है शक्तिवान है, किस प्रकार से मारपीट कर हो कैसे उसे छीन लेता है सारा संपत्ति बेचारा, वो कभी सोचा नहीं था। जिनके ऊपर बड़े भरोसा किया था, जिनको बहुत मानता था, वो ही फंसा कर ले लिए सारे, उसका तड़ित्रांत हो जाता है, कभी ऐसे हताश हो जाता है सुरेर हित। और उसके बाद में कभी कभी बहुत दुखी होता है जब सारे संपत्ति चला जाता है जिसके लिए इतने किया क्या था, दुखी होकर के बड़े चिंतित होकर के मूर्छित हो जाता है, मूर्छित होकर गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं आशा छूटता, बोले चलो देखेंगे फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा, बचे तो हैं, फिर प्रयास करता है। प्रयास क्या, जब कुछ नहीं है तो स्वप्न देखता है, आशा करता है, इसको अंधर्वपुर कहते हैं। ये जो मन से अब रसगुल्ला खाने के लिए विचार है, कुछ है ही नहीं, मन से सोचता मैं इसे कर लूंगा, ये करूंगा, ये करके ये करूंगा, वो करूंगा, जो प्लानिंग है वो प्लानिंग गंधर्वपुर कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सबसे पहले कहे, इसमें श्लोक में जो गंधर्वपुर शब्द है सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि गंधर्वपुर है क्या, प्लानिंग, केवल योजना ही है, और योजना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, योजना पूरा होने से पहले तुम ही पूरा हो जाएंगे, योजना क्या पूरा होगा, वही नहीं सोचते हैं। हम देखें सरकार में बड़े बड़े अधिकारी राजनेता मंत्री आदि बीस वर्षीय योजना, अरे 20 साल तू ही बचेगा क्या, बचे ही नहीं, 5 साल ही नहीं पूरा हुआ, सारे योजना खत्म कलम में रह गया, वो कितने पैसा खर्च करके योजना बना, प्लानिंग कमीशन, अरे कहां प्लानिंग करता है जो प्लानिंग करते बेचारे ना वो बचे ना तू बचेगा, कोई नहीं बचेंगे। इस सत्यता को भूल जाते हैं, ये निश्चित सत्यता, कितने तू योजना बना करके स्वप्न में सुखी हो जाओ, लेकिन कितने समय सुखी होंगे, थोड़े समय सुखी होने के बाद में धुड़ी सात खत्म, फिर नया कोई सेटल करके आएंगे, वो फिर सपना देखेगा, फिर योजना करेगा, वही तो चलता रहता है बस। तो ये जो निश्चित सत्यता है इस भव संसार का, इस संसार में प्राय प्रत्येक प्राणी प्रत्येक दूसरे प्राणी की तो छोड़ दीजिए बेचारा उनका बुद्धि नहीं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सबसे ज्यादा फंसा, बाकी जितने प्राणी है इतर प्राणी मनुष्य को छोड़ने के बाद उन बेचारे तो कम से कम प्रकृति को भरोसा करते हैं, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, वो बेचारे प्रकृति के भरोसा में रहते हैं, तो इसीलिए उनका अर्थनीतिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास वो कभी ना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अकाउंट खोलते हैं, नथिंग, वो कुछ नहीं करते, बदमाश मनुष्य ये सब करता है, क्यों, भरोसा नहीं उसका, और सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। आर्थिक समस्या सबसे ज्यादा मनुष्य को होता है, उनका तो आर्थिक समस्या है ही नहीं ना, वो जीते जितने व्यवस्था करता है इतने ही नस्ता होता है, मनुष्य फंसता। तो इसलिए ये मनुष्य के बारे में वो कहते हैं कि प्राय लोग ऐसे राजा को समझाते तुम इसी के नेता ही हो, बड़े बड़े अपने राजा मानता है, ये सब करता है, लेकिन पता नहीं है संसार में जो तो कुछ को राजा मानो, कोई कुछ को कुछ भी माने, कुछ भी देखो मुहूर्त मात्रम ये जो सपना है गंधर्व पूरा देखते देखते मिट जाता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत बड़े कवि विद्यापति का एक पद उदाहरण किए हैं, तातल सैकत बारी बिंदु सम रुतमित सुतमित रमणी समाज है। बोले सुतमित रमणी मतलब पत्नी पुत्र और बंधु बांधव के साथ जो संसार मनाते हैं, ये जो सांसारिक सुख का तुलना कैसा के हैं ना, तातल सैकत, तातल मतलब वेरी हॉट, इतने गर्म, सैकत माने बालू रेत, रेगिस्तान में रेत इतने गर्म है, कम से कम 400 फीट नीचे तक भी कोई गीला दिखाई नहीं पड़ेगा, पानी का गंध मात्र नहीं, इतने रेती गर्म है। ये तातल सैकत के ऊपर एक ड्रॉप पानी गिरा तो समाधान होगा? बोले संसार में जितने हम आशा करते हैं वो आशा में सांसारिक सुख जो सुख मिलता कैसा ना, जस्ट ड्रॉप इन ए डेजर्ट, ये एक बिंदु ये गर्म बालू के ऊपर डाल दो इसमें क्या होगा। बोले इसी प्रकार हम लोग सब आशा करते हैं, सुख की आशा करते हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद एक कहानी कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आता, बहुत पहले मैं साथ पढ़ा था उसको, कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, बेचारा गरीब था, निकारी तरह अकेला हो गया था, घर में सब बल गए थे, अकेला क्या कैसे करूं, उनका भी अकेला हो कैसे उसको कामना तो है, तो इधर उधर भटक रहा था, कैसे करके उनको 5 रुपया कहीं मिल गया, भिक्षा मांग रहा था, जवान लड़का था, 5 रुपया लेकर क्या करूंगा, बहुत सोचा, इनसे कंसल्ट किया, उनको बहुत प्लानिंग किया, प्लानिंग करके बोला बिजनेस करूंगा, कौन सा बिजनेस करूंगा 5 रुपया पूंजी में। तो किसी ने बताया देखो अभी गर्मी का सीजन है, सब मटका पानी पीना चाहते हैं, सुरह का पानी, तो इसी का बिजनेस, हाँ यहाँ कोई आते नहीं, तो टाउन में तो कोई आते नहीं, तो गांव में कुम्हार बैठा है, तो गांव में गया, जाकर कुम्हार से बढ़िया सा अब 2 मटका खरीदा 2.5-2.5 रुपया में, बढ़िया सा। अब आया बाजार में, जाते ही बेच गया, 10-10 रुपया बेच गया, 20 रुपया फटाफट, बाप रे बाप, 5 रुपया कैपिटल में 1 घंटे में 20 रुपया हो गया, कितना गुना हुआ, 4 टाइम्स इन्हें आवा। अब आकर के चैन से वो जिनको सुराय दिया वो भी रोटी फोटी खाने के लिए खा पीकर आकर अपना जो छोटा सा कुटिया था, एक रूम था, आटा सफटा बाथरूम होता था, बाहर में जाते थे सब, इसी के रूम में बैठा, बैठ कर खूब सोचा, बोला क्या बात है, सही में सुखी होने का है, क्या उपाय है, अभी देखो घंटे भर 20 रुपया हो गया, अब तो मैं काल खरीदूंगा और बढ़िया सा मटका खरीद करके इतना बेचूंगा। तो तुरंत गया शाम तक, शाम को गया थोड़ा लिस्ट लेकर के, और जा करके 4 बढ़िया बढ़िया मटका लाया, बोला उसको 20-20 रुपया बेचूंगा, अब 10 रुपया हो जाएगा, चौगुना होगा, और ला करके उसको रखा, रख करके मटका को बढ़िया देखा, खुश गया, इसको तो 20-25 रुपया हम लोग ऐसे ही ले लेंगे, ऐसे ही ले लेंगे बिना बार्गेनिंग किए, तो ला के रखा, रख करके शाम होते ही थोड़ा बहुत पानी पी के सो गया, सो करके सपना देखने लगा, सुखा रे अभी तो देखो कल 10 बजे तक तो मेरा 80-100 रुपया हाथ में आएगा, फिर दूसरा दिन मैं और 10 खरीदूंगा, इसे बेचूंगा, ऐसे हो जाएगा, अरे महीने दिन में तुम्हें 1000-1,00,000 हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर अब तो जवानी हूं, अब तो मुझे शादी तो करना ही है, कई तो मुझे देखकर पसंद करते ही होंगे, को रिजेक्ट करतेंगे धन नहीं है करके, लेकिन अब तो इतने बड़े धन हो जाएगा, अब तो ये कुटिया थोड़ी, अब ऐसे घर बनाऊंगा, अब तो काली पर 15 दिन में ईंट के लिए ऑर्डर दूंगा, अब नींव खोदेंगे, अब बनाऊंगा मकान, तो उसके बाद फिर तो शादी देख करके ऐसे करूंगा कि धन है, अब मैं भी जवान हूं तो ऐसे विवाह करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, अब नींद नहीं होता, लेटे लेटे देखते देखते वो सो गया, सपना चलता है उसका कंटिन्यू, सपना में खुद देखा कैसे बिजनेस करेगा, कितने धन होगा, ऐसे लाखों धन होगा, तो उससे भी घर बनाएगा, ऐसे बेड बनाएगा, ऐसे करेगा, फिर ऐसे शादी करेगा, शादी करके फिर जो बीबी आएगा उसको बोलेगा देख कैसे सेवा करो, तो ऐसे सेवा करेगा, ऐसे सेवा कर खिलाएगा गरम गरम चीज, सब स्वप्न सोच रहा है ऐसे करेगा ऐसे करेगा, और फिर मैं आकर फिर लेट सो जाऊंगा, अब तो दो चार कुम्हार रख लूंगा, मैं थोड़ी जाऊंगा, वो बनाएंगे फिर बिजनेस यही करूंगा, इस होलसेल सेलिंग करूंगा, सारे प्लानिंग चलता रहता है करते करते, और फिर पत्नी को बोलूंगा अरे सब कहना तू पता संभव वेट करके पैर दबाएगी और मुझे सुखी करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करेगी, कभी कभी वो सुखी नहीं कर पाएगी, मुझे मन के हिसाब से सुखी नहीं करेगी, सुखी नहीं करेगा कम क्या समझ रहा है मुझे, एक लात मारूंगा उसको, उठ करके लात चला दिया, धड़ाम विचार मटका जो रखा था चार उसके ऊपर लात पड़ गया, और स्वप्न देखो स्वप्न में गड़बड़ हो रहा था, साइड में खूब मजा ले रहा था, अब मटका के बाजू में पैर पहुंच चुका था, है मुझे सुखी नहीं करेगा, मैं जैसे चाहता हूं मारा लात, एक मारा लात तो चारों मटका ध्रास खत्म, और नींद खुला नींद खुल देखता और है ही नहीं, पूंजी खत्म मटका भी खत्म, अब क्या हो गया बेचारा सारे प्लानिंग सपने से सपने रह गया, स्वप्न खुलते तक भी नहीं रहा, उसी में जो बेचारा मटका था वो भी टूट गया, पूंजी भी खत्म, कुछ नहीं रहा, 20 रुपया का लागत इतना करके लाया था वो भी खत्म हो गया, अब कहां से मिलेगा मटका लेकर घूम रहे, तो इसी प्रकार के संसारिक सुख इसी प्रकार टूट जाता है, हम बहुत प्लानिंग अपना करते रहते हैं, बहुत योजना करते हैं लेकिन हो नहीं सकता, और फिर भी हम लोग की अभिज्ञता को नहीं लेते हैं ना कि वो देखते हैं, देखते सुनते अनुभव भी करते फिर भी नहीं लगता, नहीं चलता रहता है ऐसे थोड़ी, अरे भैया सुखी होना चाहते जैसे प्रभुपाद, सुखी होना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तेरा बर्थ राइट है सुखी होना, क्योंकि तू भगवत अंश हो, भगवान आनंदमय है, तू भी आनंद चाहता है, आनंद हो ही सकता है क्यों नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा बेचारा को पता नहीं कैसे होना, अरे जिसी के तू अंश है, जो तेरा अंशी है वो जब सुखी होगा तो सुखी ऑटोमेटिक होगा, अरे तुझे अगर मालपुआ पूरी पेट में डालेगा तो भूख तेरा मिटेगा, हाथ में पकड़ कर रहेगा नाक में कान में फंसाएगा तो भूख थोड़ी मिटेगा, नहीं होगा, तू आपने इंडिपेंडेंटली सुखी होने का योजना करो तो हो ही नहीं सकता, एकमात्र एक ही फॉर्मूला है सुखी होने का, जस्ट वन फॉर्मूला समुच्चय संसार में एक ही फॉर्मूला है, अगर आप सुखी होना चाहते सभी का एक ही एजेंडा है, ये प्रोजेक्ट को हाथ में लो, क्या है ना किसी भी प्रकार से जेन तेन प्रकारेण आपके पास जो भी कुछ शक्ति बुद्धि सामर्थ्य जो भी कुछ है सब कुछ लगा करके भगवत प्रसन्न करने के प्रयास करो, भगवान को या भगवान के कोई निष्प्रिय भक्त है उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करो, ये लागत लगा दो तो आप ऐसे ही सुखी हो जाएंगे, कभी सोच भी नहीं सकते, इतना ही करना है, लेकिन हम केवल इसी को नहीं करेंगे और बाकी सारे करेंगे तो कैसे सुखी हो सकते, हो ही नहीं सकते, तो ही बात को हम संसार के लिए संसार सुख बटोरने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये बात कौन किसको कह रहा है, ये देखिए ये कलयुग का बात नहीं है, ये सत्ययुग का बात है, क्योंकि वो राजा राहुगण जा रहे थे कपिल भगवान के पास क्लास सुनने के लिए, कपिल भगवान तो सत्ययुग के बता रहे, सत्ययुग में भी इतने बड़े आत्मज्ञानी जिज्ञासु महाराज वो सोचते हैं बोले भैया मैं तो इतने दूर जा रहा था, अगर मैं मनुष्य ना होता तब ये मेरा संशय दूर होता, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, अगर मैं दूसरे कोई योनि में आ जाता तब तो साधु संगता नहीं हो सकता, ये पश्चाताप करते आपने को कितने भाग्यवान मानते हैं, बोले मैं मनुष्य था इसलिए आज इससे बड़े आत्मज्ञानी महापुरुष के साथ मेरा संग हुआ, उनसे मेरे ये संदेह नाश हुआ, मैं इतने बड़े स्थिति को प्राप्त किया, अगर मैं मनुष्य ना होकर और कोई से प्राणी होता तो इसे साधु संघ क्या हो पाता, नहीं, ये संसार में सबसे दुर्लभ है सत्संग साधु संघ, वो केवल मनुष्य शरीर में ही सुलभ हो सकता है, तो इसलिए मनुष्य शरीर इतने मूल्यवान है, क्योंकि सबसे कीमती चीज जो सत्संग वो मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होगा, बाकी किससे नहीं होगा विचार, तो इसलिए रहुगण तो आपने को महान सौभाग्यवान मानते बोलिए अगर मैं ना होता तो कहां इसे भेंट होता, ये मनुष्य शरीर का कमाल, बोले देवता लोग को भी चांस नहीं मिलता, देवता भूत बहुत बड़े बड़े शारीरिक गुण से, सामर्थ्य से, बल से बहुत बड़े बड़े और लोग हैं, लेकिन ये सुयुक्त केवल मनुष्य को प्राप्त होता है, केवल मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे भागवत कथा, सुखदेव गोस्वामी जी भागवत कथा कहने जा रहे थे तो देवता लोग को आकर उनको ब्राइब देने लगे, बोले हम ये अमृत देना चाहते हैं परीक्षित के लिए, तो अमृत पिला दो, ऐसे ही बच जाएगा, हम नेक्टर दे रहे गारंटी वाला, हमारे यहाँ डुप्लीकेट चलता नहीं, हाँ ISI ब्रांड अमृत का बोतल देते हैं आप लीजिए। सुखदेव गोस्वामी बोले मैं नहीं दूंगा, बोले ये अमृत थर्ड क्लास है, ये अमृत तुम्हारे पास आए तुम फिर मेरे पास क्यों आ रहे, तुम्हारा पास अमृत है लेकिन अमृत पी कर भी बाली महाराज पीटाई के भगा दिया, सब भाग कर गए, अमृत क्या पानी नहीं पीने मिला, क्या सुख है ये अमृत में, इतना सुख नहीं है। जो सुख है भागवत अमृतम में है, इसलिए आपको ऐसे में नहीं दूंगा उसके बदले में, इसके पाने के लिए मनुष्य लोक में आना पड़ेगा, केवल मनुष्य उसका भागीदार। तो इसलिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली मनुष्य जन्म प्राप्त होना, तो इसको प्राप्त हो करके फिर भी इसमें फंस जाना, तो इसी को ये बात कह रहे हैं। सत्य युग में भी जब धर्म चतुर पैर में था, तप सोच दया सत्य आदि पूरा चार पैर में धर्म मौजूद था, सत्य युग में ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष राजा को जड़ भरत ने कह रहे हैं, वो जड़ भरत भी छोटे मोटे आदमी थोड़ी, अरे एक तो वो राजर्षि थे, ऋषभदेव का पुत्र थे, भगवत पुत्र हैं, भगवान ने उनको रिकमेंडेड किए थे, ये बड़े ज्ञानी पुरुष है, और भागवत भी कहता है भाव स्तर के भक्त हैं, इतने वैरागी थे उनके जवानी में, राज्य परिवार त्याग करके जाके जंगल में भजना करते थे, और उस जन्म से ही जन्म तीन जन्म के अभिज्ञता उनके साथ में है, और इस जन्म में तो जानबूझ करके संसार से इतने विरक्ति भाव लिए हैं, किससे बात नहीं कर रहे थे, उनके माता पिता मर गए बोल बोल करके, मुंह नहीं खोले, जड़ होकर बैठे, बोले अंधा मुख बधिर कुछ है ही नहीं, लेकिन आज ऐसे व्यक्ति वहां बोल रहा है, सत्य युग के समय बोल रहा है कि देखो ये संसार इतनी खतरनाक है, तो संसार से सुख की आशा मत करो, डोंट मेक एनी प्लानिंग, संसारिक सुख की आशा ही मत करो, अगर आशा करना है संसार बने, सांसारिक सारे कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, सब कृष्ण केंद्रित करो, आपके संसार की सुत मित्र रमणी समाज सब कृष्ण भक्त बना करके सुबह शाम के कृष्ण के कीर्तन करो, घर में जो भी खाने बना करके कृष्ण को भोग लगा करके खाओ, कृष्ण भजन करो, कृष्ण ने जो दे सुख से इसको ग्रहण करो, वही मेरे भाग्य में ठाकुर जी ने दे, आज उसको खाकर चलो, बस सुख आपका साथ ही रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा, और उसी को छोड़ करके बाकी जितने उपाय बटोरोगे वो तो गंधर्वपुरम सपने की महल की तरह ऐसे ही सपने में रह जाएगा, और सपने खुलने से पहले ही मटका तोड़ सब तोड़ ताड़ के रखेगा बेचारा खत्म। तो इसी प्रकार के एक घटना मुझे एक संत ने बता रहे थे, रेगिस्तान का बात आ रहा है, तातल सैकत एक व्यक्ति थे इस प्रकार, उन्होंने देखे कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन बिजनेस में, तो उन्होंने देखे राजस्थान का वो साइड पाकिस्तान बॉर्डर में साइड में गए, व्हाइट डेजर्ट अगर है ना डेजर्ट, तो वहां गए, बोले यही बिजनेस करूंगा, यहाँ तो कोई कंपटीशन ज्यादा है ही नहीं, मैं ही अकेला हूँ व्यापारी, अब पहले जमाने में ऊँट लेकर चलते थे, बोले ऊँट भी ज्यादा पैसा लगता है उसे लेकर कहाँ जाए, तो खुद ही जाते थे जा करके, वो ज्यादा नहीं 50-100 किलोमीटर के रेगिस्तान है, लेकिन वो जाते थे जाकर कहीं से करके वही बिजनेस वहां करते थे, कई बार जाते थे अच्छा धन कमाते थे, तो धन के लालच में वही रिस्क लेकर जाते थे। एक बार क्या हुआ, कई बार गए हैं पहले, तो एक बार जाते थे, जो जाते थे कम से कम 8-10 दिन के लिए अपना खुराक पानी ले जाते थे और जाकर पहुंच जाते थे 8 दिन में, नक्शा हाथ में रहता था, वो नक्शा फॉलो करके फिर पहुंच जाते, फिर सामान लेकर के। तो एक बार इन्हें इतने खुश हो गए थे, काम ठीक ठाक चल रहा था करके, अब जाते समय नक्शा हाथ से गिर गया था, अब भूल गए रास्ता, भूल गए मरुभूमि के अंदर डेजर्ट के अंदर रास्ता भूल गए, तो बस गलत रास्ता में चल पड़े। अब जा करके जब उनको महसूस हुआ कि मैं गलत दिशा में आ गया, वहां तो कुछ पता भी नहीं चलता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वहां जाकर के पता चला कि मैं गलत रास्ते में आ गया। अब तो उनका हार्ट बीटिंग बढ़ गया, अब क्या करूं, अब चारों ओर हताश होकर देखे मैं कहां गया। और जो उनका पास समन था उसके ऊपर तो अभी गिनती करके देखे, हैं 10 रोटी लाया था, अभी कितना है, आज कितने खाऊंगा, कितने रहेगा, बिल्कुल एक एक भाई गिनती करके। अब देखते देखते 4 दिन गुजर गया, सारे खत्म हो गया, पानी तो पहले खत्म हो गया क्योंकि प्यास ज्यादा लगता है, भले रोटी और 2-3 बाकी था लेकिन पानी पहले से खत्म हो गया। और बेचारा कभी इधर दूर जाए 5 किलोमीटर, फिर वापस आए, फिर इधर जाए, फिर वापस आए, कोई देखने के लिए, पूछने के लिए नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं। अब उनको तो हार्ट बीटिंग बढ़ चुका था, उन्हें डर रहे थे कि क्या हो जाए। अब ये पानी खत्म होने के बाद 2-2.5 दिन बीत गया तब तो उनको लगा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं, अब तो मरना ही है। पानी के लिए इतने तरस रहे थे, बोले एक ड्रॉप पानी आ जाए, पानी पानी पानी, रेगिस्तान में पानी कहां है। अब खाने की चीज देखने मन नहीं करता, पानी नहीं, सचमुच पानी जीवन है, पानी के बिना सब कुछ बेकार हो जाए। अभी आएगा एक महीना के बाद निर्जला एकादशी ना, तब पानी के महत्व एक दिन पता चलता है। तो पानी इतने आवश्यकता है, जल ही जीवन है। तो इतने बेचैन हो गया, हताश हो गया, रो पड़ा, रोते रहे तो क्या करेगा। तब इस अवस्था में भगवान याद आते, कितने ब्रह्म नास्तिक हो, बोलता है प्रभु और कोई नहीं है, अगर आप सचमुच है, लोग बोलते हैं आप है करके, मैं भी सुना था हरे कृष्ण वाले खूब करते हैं ऐसा, अगर आप हे कृष्णा, हे गोविंद, हे नारायण, अब मैं क्या ऐसे मर जाऊंगा, मैं यकीन करता हूं आप है, अभी तो मानता हूं पक्का आप है, और आप नाम सत्य है, आप सत्य है, लेकिन मेरा जीवन सत्य पूछेगा कि नहीं। अब तभी और तो कोई आशा तो है ही नहीं, निशा को आशा कर रहा था, आशा करके जो प्लानिंग धन कमाने के लिए संसार सुख सारी सुख ले कर रहा था, अब देखा कि ये सुख तो अभी कालाई पड़ चुका है। अब भगवान के ऊपर भगवान नाम करे, वही स्वप्न देखने लगा कि भगवान करे मेरे कृपा कर दे तो पानी मिल जाए, भगवान कृपा करे मुझे रास्ता मिल जाए, भगवान कहा कि कृपा करे, फिर 2 दिन बीत गया। बीत गया, अभी भगवान के ऊपर जो यकीन में वो भी गड़बड़ होने लगा, ये सही में भगवान है या कोई विश्वास करे या ना करे, क्या करे। जब गला रुद्ध हो चुका होता है, सूख जाता है, इस प्रकार होता है। कभी कभी तो ऐसे होता है, मतलब भगवान का विश्वास खत्म, मानता हूं भगवान तो बहुत दयालु है, मैं खूब सुना हूं। अब तब ऐसे ऐसे दिखता है पानी की तरह, वो मरीचिका होता है ना धूप के समय में, दूर में बिल्कुल नील जल बह रहा है, दौड़ता है, दौड़े 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 बेचारा 2-3 घंटा 4 घंटा फुर्ची तो घंटना पानी कहा कुछ नहीं, तो मरीचिका था, वो हताश होकर के वापस आता, रेत मुंह में ले लेता है, चुस चुस करके फिर फेंक करके आता, रेत तो खा नहीं सकता, चुसता शायद कुछ पानी निकले उसमें ही जाए, नहीं सुखा रहे थे, आता है हताश होकर के। ऐसे 3-4 बार भ्रमित हो चुका है, सर पीट चुका है कि तो पानी है नहीं, मैं गलती में इतना परिश्रम किया। वापस आकर के अब तो 2 कदम चले बैठे, अभी मैंने जैसे कहते ना प्राण निकलते समय अभी ये अवस्था आ चुका था। अब बोला प्रभु बस अब तो मरना है, अब मरना है, अंततः सारे शक्ति लगा करके बोला एक तो प्रार्थना कर लूं शायद ठाकुर हो, बाकी तो कुछ है नहीं, पानी तो नहीं है, बाकी सब खत्म, शायद प्रभु हो, उनके बिना तो इसी स्थिति में कोई सहायता करने वाला है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दिखने से। तो अंततः एक प्रकार एक प्रार्थना किया, आंख बंद करके मरने से पहले वो आंख खोल कर देखा, दूर से दिखाई पड़ा एक कुटिया, तो अपना आंख को विश्वास नहीं किया, ऐसे ऐसे आंख 2-4 बार मुझ कर फिर देखा, हाँ दिखता तो है, क्योंकि 2-4 बार भ्रमित हो चुका ना, धोखा खा चुका है, बोला ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बार बार देखा दिखता है कुटिया, बोला दिखता तो है। तो गया और स्पीड थोड़ा बढ़ाया, से है नहीं था स्पीड से खत्म गया, और सचमुच जितने नजदीक गया उनको आंख को विश्वास नहीं हो पाता, कुटिया तो है, रेगिस्तान के कुटिया, तो उनका तो रोम रोम खिल गया, अरे कुटिया जब रेगिस्तान की तो कोई ना कोई तो होगा, कुटी चक बहुत कोई बाबाजी भाजी कोई तो होगा, पानी तो होगा, जब कुटिया है कोई व्यक्ति हुआ तब पर तो पानी बिना तो कैसे। तो इतने खुश हो गया, इतने दुर्दस्त अवस्था में दौड़ पड़ा कुटिया के पास, कुटिया के पास देखा पन्न कुटीर है,
पास पहुंच करके बड़े आशा से जर्जरित होकर के चारों तरफ चक्कर लगा घूम कर जाकर कुटिया के द्वार पर खड़े होकर देखा, पूरे सारे डाउन हो गए हताश, ये क्या देख रहा है, वीरान कुटिया है, जैसे कोई सालों से कोई नहीं है, धूल धूसरी तेज से पड़ा, बिल्कुल वीरान है, हाय कोई नहीं है, आवाज लगाया कोई है कुछ नहीं है, प्रतिध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। ओ अभी तो जो इतना सपना है सब खत्म हो गया, कुटिया भी देखा उसके अंदर कोई ही नहीं, अब क्या करो अब तो फिर मरना है, लेकिन ऐसे हताश होकर देखा कि कुटिया के कोने में एक खेचू क्या कहते हैं उसको, हैंडपंप लगा हुआ। अरे हैंडपंप तो है, हैंडपंप है तो पानी का कल है, ये तो पानी मिल जाएगा। अब हैंडपंप देख करके नाच गया, अब तो बोला तो हो गया तो है, और क्या आदमी क्या जब रहते पानी की व्यवस्था तो मैं नहीं था, इतने खुश हो गया, खुश होकर पूरे शक्ति से गया आशा लेकर, अब काम बन गया, हे प्रभु आप है बहुत, इतने जो भी दुआ देना था ठाकुर जी को दे दिया। अब खुश होकर जा करके बड़े प्यार से हैंडपंप लेकर चला, उठाया धम धड़क धड़क सूखा पड़ा है कुछ नहीं, कभी कभी हैंडपंप देखा ना आपने, उठा उठा के मारा धड़म सीधा नीचे चला गया, कुछ है नहीं उसे सूखा। अब तो और हताश हो गया, दो चार बार ऐसे धम धम करके देखा तो कुछ नहीं, तो सूखा पड़ा है, दो तीन बार ऊपर नीचे करके फेंट होकर गिर पड़ा, मूर्छित होकर के वही हैंडपंप के किनारे गिर पड़ा, बोला अब तो मरना ही है प्रभु, अगर यही इच्छा मुझे मरना तो मरना, तो इच्छा क्या अभी तो कोई इच्छा पीछा की बात है, मरना ही है बस बस। अंतिम ऐसा कैसे मरा था, प्राण निकलते समूर्छित हो पड़ा था, तो देखा कि जो हैंडपंप के ऊपर जो कुटिया था, जो छाप था झोपड़ी का, उसी में एक बोतल बंधा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। अरे पानी में भरा हुआ बोतल टंगा हुआ है ऊपर छात में झोपड़ी में। अब जैसे नजर पड़ा उनके जो प्राण निकल रहा था थोड़ा स्टॉप हो गया, निकला नहीं, पानी को देख करके रुक गया, और पूरी शक्ति लगा करके जब मारे पकड़ लिया ऐसी बोतल को, खींच लाया पानी है, अच्छा पानी है। अब तो मुंह के पास ले गया पीने के लिए, मुंह के पास लिया तो जो टिप्पी लगा था उसमें एक पर्ची पड़ा हुआ लगा हुआ था, तो पीने से पहले देखा है कि पर्ची लगा हुआ उसमें, तो पर्ची खोलकर पढ़ा, इसमें कहे भैया इस पानी को हैंडपंप में डाल इस्तेमाल करो फिर पानी निकलेगा, इस पानी को खुद मत पीजिए, पानी क्या कीजिए उसमें डालिए, उसमें डालकर चले पानी निकलेगा। तब पर्ची की देख रहा है पानी मुंह के पास रखा है, पर क्या करूं अगर डालू पानी नहीं निकला तो, बोले 10 बार धोखा तो खा चुका हूं, ऐसे करो कोई काम नहीं कर रहा है, अब ये पानी इतना है मेरा जीवन तो पानी एक बिंदु के लिए तरस रहा है, अब मरे तब मरे, पानी मेरे सामने मुंह के पास रखा हूं क्या पीऊं ना उसमें डालू, इतनी तो पानी है। आप बताए किसी घड़ी संधि मुहूर्त है उसका, अब इंडिसिशन क्या करूं, मैंने उसमें डालूं या खुद पीऊं, कई बार 7 बार बोलते पी लूं मुंह में लगा करके, अरे पी लूं तो बच पाएगा, अब घंटे भर में फिर प्यास फिर मरेगा, लेकिन अगर पानी निकलेगा तब तो फिर कहना क्या है, पानी सच मुझे देख रहा है बिल्कुल सूखा, एक बोतल मिल जाएगा। कई बार सोच सोच करके फिर ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो, ठाकुर जी अगर यही पानी बटल उसमें ये भी लिख करके दिखाया तो डाल देता हूं आपके नाम में, हरी भरोसे जा अभी डालता हूं। बहुत ये हताश होकर के पानी कांपते हुए हाथ में, बिल्कुल थर थर कांप रहा था, डालू ना डालू, अब मरना था फिर भी डाल ही दिया, पिया नहीं, इतने तरसते अवस्था में पानी डाल दिया उसमें बटल भर, डाल करके प्रभु को अब तो कोई उपाय नहीं था, हरे कृष्ण मंत्र 2-4 बार जप लिया, जप करके उठा करके प्रभु कृपा काम कर जाए काम कर जाए करके बड़े आशा से चलाया, और थोड़ा दम लिया और एक बार दम लिया तो तीसरे बार तो खचप करके पानी निकला, थोड़ा पीला पानी निकला, और ये बाबरे फाइन फर्स्ट क्लास वाटर पानी निकला। अब सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा, कितने खुशी हुआ होगा, अरे जाकर पानी लगा बिल्कुल ठंडा मीठा पानी है, भर भर करके पानी पी गया, आकंठ पानी पिया, और फिर बोतल में भरा, बोतल में भर करके उस जब टांगने जा रहा था देखा उस खेत में एक और पेपर और पेंसिल टंगा हुआ है, बोला ये क्या विचित्र है, तो उसको खोद कर देखा उस पेपर में रेगिस्तान से निकलने के लिए नक्शा बना हुआ था, और पेंसिल टंगा हुआ था, बोला देख लीजिए, और उसमें लिखा था कि भैया भाई साहब वो पानी बटल में भर करके ये पर्ची फिर लिख करके उसे चिपका कर वो टांग देना, आपकी तरफ फिर कोई राही आए तो उसको देख ले। तो पानी भरा उसमें भर करके लिखा करके वही लिख दिया कि पानी की उसमें इस्तेमाल करना, लिख कर टांग दिया, पानी पेट भर करके मस्त खुशी होकर नक्शा मिल गया था। अब जा रहा था रास्ता में थोड़ी देर जाकर फिर देखा, क्या सोचा, फिर वापस आया, वापस आया कहीं पर, वापस आकर के पर्ची के निकाल करके बटल में चिपका था, उसमें लिखा बोला भाई साहब यकीन करो काम करता है। भगवान के भरोसे यकीन करो काम करता है, ये लिख करके फिर गया, है ना। नहीं तो इसी कथा से हम ये शिक्षा मिलता है कि सभी का हमारा यही हाल है, अंत जब हताश हो जाते हैं तब जाकर के भगवान भरोसा करते, तब भी पूर्ण भरोसा नहीं करते, तब भी इतने रख करके इतने करते हैं, लेकिन भगवान हमसे बाकी कुछ नहीं चाहते, केवल एक ही मांग करते, बोले देखो मैं तो तुझे मेंटेन करता हूं, करते ही रहूंगा, लेकिन सचमुच तो सुखी होना चाहता है तो सब छोड़ करके मुझे समर्पण करना पड़ेगा। अब हम सब छोड़ना नहीं चाहते, अब बिगड़ जाता है काम, हो फिर काम बिगड़ कर यही बैठा। इसी में वो व्यक्ति एक लीटर पानी था, अब ऐसे मरते अवस्था में पी जाऊं, प्राण रक्षा करो ना उसमें डाल दो, और करेगा काम करेगा कोई भरोसा थोड़ी है, फिर भी उन्हें डाल दिया हरि भरोसा में, तब सुखी हो गया। इस प्रकार मरुभूमि में होते हुए भी, प्राण संकट अवस्था में होते हुए भी भगवान में पूर्ण भरोसा करके छाड़ दो, मरना जीना तेरे हाथ में, अब तेरे ऊपर हेतु समाप्त, फिर देखो कैसे समझ जाए, फिर सुखी उसके बाद आएगा। भगवान उसी की गारंटी देकर कहते हैं जब तू सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब तेरे दुनिया के सारे खाता मैं संभाल लूंगा, सारे डिलीट बटन मार दूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब आज प्रश्न नहीं हो सकता, मुझे जल्दी जाना है, मैं जा रहा हूं, बाद में फिर सोचेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की।